राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम
वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण 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 नारायण।
एक खास बात निवेदन करनी है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हरेक भाई बहन के ये बात बची हुई है कि बहुत कठिन है, बहुत समय लगेगा, बहुत उद्योग परिश्रम करना पड़ेगा, सब प्राप्ति होगी। वास्तव में ये बात नहीं है। हम प्राप्त करना चाहते हैं जिस चीज को, वो अगर चीज अभी न हो, उसका अगर निर्माण किया जाए तो उसमें देरी लगती है। फिर जो चीज है मौजूद, उसको प्राप्त करने में देरी का काम नहीं है, बड़े भाई परिश्रम का काम नहीं है, केवल उधर दृष्टि हो जाए तो। भगवद गीता ने ये बहुत विशेषता से बात कही है। भगवान ने जब गीता सुना करके और पूछा कच्चे एकाग्र चित्त से तुमने गीता सुनी, बड़ा प्रश्न। और कस्य विज्ञान सम्मोह परनष्टस्ते धनंजय, अज्ञान से उत्पन्न माने वह मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह नष्ट हो गया। स्मृति लगा, स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसाद आपकी कृपा से। तो भगवान ने पूछा भी एकाग्रता से गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट, वो बात पूछी। अर्जुन ने कह दिया कि मैंने मेरा मोह नष्ट हो गया, तो इससे सिद्ध हुआ है कि तुमने एकाग्रता से गीता सुनी है। अभी गीता एकाग्रता से सुने जाए तो उसका मोह नष्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारा मोह नष्ट हो गया तो गीता एकाग्रता सुनी। अभी कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा मोह तो नष्ट हुआ, परंतु गीता के सुनने से मेरी पंडिताई से नष्ट नहीं हुआ है, तत्प्रसाद आपकी कृपा से नष्ट हुआ। एक बात सुनी जाती है, एक उसमें कृपा रहती है। तो सुन करके हम समझते हैं, तो जितनी जितनी बातें सुनते हैं उन बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, वो भी पूरी नहीं समझते। तात्पर्य कहने वाले का जो अनुभव है, वो अनुभव उसकी बुद्धि में पूरा आता नहीं है। और बुद्धि में जितना पूरा आता है उसमें मन की कल्पना में नहीं आता, और मन की कल्पना में जितना आता उतना वाणी से वर्णन नहीं होता, और वाणी से जितना वर्णन होता है वो श्रोताओं के सब पे सबका सब कानों में नहीं पहुंचता, कानों में पहुंचता है जितना उनका मन ग्रहण नहीं करता, और मन जितना नहीं पकड़ता उतना भी बुद्धि में पक्का बैठता नहीं, और स्वयं के अनुभव बहुत थोड़ा होता है। तो सुनने के द्वारा हम जितना ज्ञान संपादन करते हैं वो सीमित होता है, और कृपा से जो होता है ज्ञान वो असीम होता है। कृपा ऐसे नहीं है कि ऐसे कर्म से कोई जाती हो, कृपा तो स्वतः है। जिसने भगवान की कृपा, भगवान सब जगह मौजूद विराजमान है तो वो कृपा करते। भगवान ने कहा दसवें अध्याय में, तेषाम एव अनुग्रह अमुकम पार्थम, उनकी ऊपर कृपा करने के लिए अहम अज्ञान दम तम नाशयामि, भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान दम तम तम नाशयामि। देव विमान ज्ञान के द्वारा अज्ञान का मैं नाश करता हूँ, कैसा मैं अनुग्रह कृपा करने के लिए, कृपा करके क्यों इंद्रिया में सब जगह विराजमान है, जहाँ हमारा अज्ञान है वहाँ भी भगवान मौजूद है, तो मैं अपने ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से जो अंधकार है उसको मैं नाश करता हूँ। तो भगवान की कृपा से जो लाभ होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता है। गीता में कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते ते ब्रह्मचर्य, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे तत्व को उस ब्रह्म को जान जाते हैं। भगवान का आश्रय लेने से भगवान की कृपा विशेष होती है। इसमें एक बात है खास के भगवान की कृपा विशेष होती नहीं, जैसे भगवान सब जगह परिपूर्ण है ऐसे उनकी कृपा भी सब जगह समान रूप से व्यापक है, परंतु आश्रय लेने से और सम्मुख होने से वो कृपा प्राप्त होती है, विमुख होने से प्राप्त नहीं होती। जैसे वर्षा बरसती है उसके सन्मुख पात्र होता है तो उसमें वर्षा आ जाती है, और पात्र उल्टा होता है तो वर्षा तो आती है परंतु वो पकड़ नहीं पाता। ऐसे सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अग्नाशी तब ही, भगवान के सन्मुख जब हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप तभी नष्ट हो जाए, जब ही तब ही, इसमें देरी का काम नहीं है। सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म को जगना से तब ही, तो सन्मुख होने से उस कृपा को वो ग्रहण कर लेता है, सन्मुख न होने से उस कृपा को पकड़ नहीं पाता है, कृपा में कमी नहीं है। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है स्वतः उसकी प्राप्ति होती है, सांसारिक काम करते हैं तो वो है नहीं, पहले उसका हम निर्माण करते हैं, तो निर्माण करते उसमें देरी लगती है, उत्पादी आप ही विकारी संस्कार ये जो कर्म होते हैं वो उत्पादी होता तो उत्पन्न करना पड़ता है, प्राप्ति आपके तो वो कहीं जाकर प्राप्त करना पड़ता है, विकार होता है संस्कार है, ऐसे कर्म में करने में देरी लगती है, पुरुषार्थ होता है उसे प्राप्ति होती है। नित्य प्राप्त तत्व में ये निर्माण करना नहीं पड़ता। मया तत्वजम सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना अव्यक्तमूर्तिना मया इदम सर्वम तथम, सब मैं परिपूर्ण हूँ निराकार रूप से। तो परमात्मा परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में लौकिक चीजों की प्राप्ति की तरह उद्योग नहीं है। उसमें खास अपनी लगन हो और सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का तात्पर्य है कि संसार के संग्रह और सुख भोग की इच्छा है, इनसे विमुख हो जाए। ये दो इच्छाएं खास बाधक है, एक संग्रह करने की इच्छा और एक संयोग जन्य सुख भोगने की इच्छा। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, मान बढ़ाई आराम ये तीन है। शरीर में आराम मिले, सुख पूर्वक रहे और एक हमारा आदर सत्कार हो और हमारी बढ़ाई हो, तीन ये है, पांच विषय ये आठ चीज है। इनमें जो आसक्ति है वो आसक्ति होने से इनसे विमुख हम नहीं हो सकते और परमात्म तत्व के सन्मुख नहीं हो सकते, ये बाधा है। सन्मुख होते तो प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। भगवद गीता को योग शास्त्र कहा है, तो योग शास्त्र में से योग की व्याख्या भगवान ने दो की है। एक तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और एक समत्वम योग उच्यते। तो दुख संयोग वियोग का मतलब हुआ संसार से विमुखता और समता का मतलब हुआ परमात्मा के स्वरूप में स्थिति। दो चीज आए, उस संसार का वियोग भी स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। आप हम देखें तो हमारा बालपन चला गया। कोई व्यक्ति भाई अथवा बहन कह सकते हैं कि भाई हमने बचपन को छोड़ दिया, छोड़ा किसी ने, छूट गया। तो जैसे बचपन छूट गया, जवानी छूट जाएगी, वृद्धावस्था छूट जाएगी, सब भी छूट जाएगा। ये तो सब छूटने की तरफ जाएगा, ये दुखालय है। माम के पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है, इसमें हम सुख ढूंढते हैं। जैसे कोई भोजनालय में जा करके और कपड़ा ढूंढता कि दूसरी को मिलता है, अरे ऊपर मोड़ के देखो, ये वस्त्रालय नहीं है। पुस्तकालय में जाकर कोई पूछे कि यहाँ साकुड़ी मिलेगी, नहीं तो वो क्या लिखा है, तो संसार का बोर्ड लिखा दुखालय माम कहती है पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। मेरी प्राप्ति होने के बाद ये दुखालय अशाश्वत, ये पुनर्जन्म नहीं होता। तो दुखालय में हम सुख ढूंढते, ये हमारी गलती होती है। अगर हम परमात्मा की प्राप्ति चाहे, लगन हो जाए उसी की, तो वो तो है ही, तू तो नित्य प्राप्त है और संसार नित्य ही अप्राप्त है। हम जानते हैं, देखते तो ये है कि हमारे को संसार मिला है, हमारे साथ संसार है, हम संसार के साथ है, पर संसार साथ नहीं है। ये तो प्रतिक्षण आपसे निवृत्त हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण से आपसे संसार शरीर वियुक्त न होता हो। इतनी सूक्ष्म रीति से तेजी से नष्ट हो रहा है, इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते। एक बार देख दोबारा देखते हैं तो वो परिवर्तन हो गया उसमें, इतना तेजी में स्वतः परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होकर कहाँ जा रहा है, तो नाश की तरफ। ये सब का सब बदल करके अभाव में जा रहा है, अभाव में। तो भाव रूप जिस संसार को मानते हैं वो तो अभाव में जा रहा है, और भाव रूप परमात्म तत्व है वो कभी जाता ही नहीं, वो सदा प्राप्त है, वो है ज्यों का ज्यों रहता है। उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव नहीं। वो है नहीं तो वो प्राप्त तो संपूर्ण को सदा परमात्मा तो प्राप्त है और संसार सदा ही निवृत्त है। तो दुख से योग वियोगम योग सुख से नाम योग का और समय तुम योग उच्चते। तीसरी बात आती योग कर्म सुख औषधम आता है, वो योग की महिमा है, योग की परिभाषा नहीं है। कर्म सुख योग औषधम, कर्म में योग है वही कुशलता है। योग के बिना कर्म कुछ काम के नहीं, कर्म तो कर्मणा विद्य जंतु वो तो निमित्त होता है। कोई कर्म करो नित कैसे होगा, कर्म का आरंभ होता है, अंत होता है और कर्म के फल का संयोग होता है, वियोग होता है, तो कर्म कैसे उसको प्राप्त कर लेगा, वो तो वियोग होता है उसका। तो तत्व वो तो भोग योग कर्म सुकर्मा में योग जो समता है वो योग ही कुशलता है कर्म में, और कर्म में खुद में कुशलता नहीं है। कर्म योग से तत्व की प्राप्ति होती है तो उसमें योग में शक्ति है, इसमें योग कर्म सुख कौशलम में योग की प्रशंसा है, योग की परिभाषा नहीं है। कर्म कौशलम योग ऐसा किया जाए तो कर्म में कुशलता तो जेब कतरने वाले भी बहुत कुशल होते हैं, पता ही नहीं लगता वो कतर रहते हैं। तो ये कुशलता का नाम योग नहीं है, समता का नाम योग है, दुख से योग वियोग का योग है। वो योग है कर्म में वही कुशलता है। योग क्या है कि सिद्ध सिद्धि समो भूत सम तुम योग उच्चते। योगस्थ कुल कर्माणि भगवान ने दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में कहा योगस्थ सन कुर्माणि, योग में स्थित रहता हुआ तू योग का कर्म कर। तो योग में स्थित रहना ये है महत्व की चीज। कर्म तो कर्तव्य रूप से आता है, करते ऐसे भी करते हैं, पर योगस्थ सन योग में स्थित रहता हुआ कर्म कर। योग में स्थित कैसे रहे कि संगम तत्व आसक्ति है, प्रियता है, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में जो हमारा आकर्षण है इसका त्याग करो। संगम चलो और फलम चाहिए, और इसका फल चाहते हैं जैसा हमारे को पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, परलोक में स्वर्ग मिलेगा, अमुक मिलेगा, ये है फल। तो संग का और फल का त्याग करके तुम काम करो। काम कैसे करें, योग में स्थित और करो। योग क्या होता है किसी से दो समूह समर्थन योग उच्चते। राग द्वेष हर्ष और शोक न हो, इसमें सावधान रहो। सावधान ही साधना है। हर समय ऐसा नहीं कि भजन स्मरण करें उस समय ध्यान करें जप करें निधिध्यासन करें तब तो सावधान रहे, और समय तो व्यवहार का काम है। तो व्यवहार और परमार्थ, ये व्यवहार में तो दो चीज है परंतु तो साधक के ये भेद नहीं होता है। व्यवहार में भी परमार्थ, परमार्थ में भी परमार्थ। कल मैंने बात कही थी गीता पर, व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। व्यवहार करते हुए तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये बात एक विलक्षण सिखाती है गीता। युद्ध जैसी कला, युद्ध जैसी कला भी कल्याण करने वाली हो जाए। मैं ये बात कही थी अर्जुन की दृष्टि से तो युद्ध करने में पाप है, पाप मेवा से दसमा नतेता न आतता ही नहीं आता है उमान से पाप मेवा से पाप ही तो मिलेगा। भगवान कहते अस्त्य तुम इन धर्म संग्रहों में न करी शेषी तथा स्वधर्म कीर्तन से हितवा पाप युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन की दृष्टि में युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान की दृष्टि पाप युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा। तो छुटकारा कैसा हो कि सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया देव तथा युद्धा युद्ध नहीं पाप इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। तो सिद्धि सिद्धि में सम रहना, अंग के दम से समझ नहीं रह सकते ऐसे और क्या कर सकते हो, सुखी और दुखी हो सकते हो, मिलेगा क्या फायदा क्या? सुखी होने से कोई वो परिस्थिति स्थायी हो जाए ये बात है नहीं, और दुखी होने से वो परिस्थिति मिट जाए ये बात होने की है नहीं, तो सुखी दुख होने से क्या लाभ होगा? कैसे सुख दुख हो जाता है? अरे हो जाता है तो भी तुम मिटाने की बात कहते हैं, क्षमता की बात कहते हैं, अगर सुख दुख हो ही नहीं तो कहने की जरूरत क्या थी? सिद्धि सिद्धि सुबह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, सम रहना चाहिए क्योंकि आप हरदम रहते हो, सुख दुख आगंतुक है, आगंतुक से नित्य रहने वाला क्यों घर रहे? घर में कुत्ता आ जाए अरे कुत्ता है कुत्ता निकाल निकाल निकाल, कुत्ता मालिक तो भाई मालिक तो आप हो, ऐसे सुख दुख तो कुत्ता जाता है और जाता है, इसे क्या घबराओ? आप में विषमता क्यों हो? अपने आगे निकाल 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 निकाल, इस बात है तो सावधान रहो, एकदम सुख दुख का भोगना नहीं है, सुख दुख का सुख दुख है ना दो तरह का होता है, एक सुखदायी परिस्थिति को सुख कहते हैं, दुखदायी परिस्थिति को दुख कहते हैं, और एक चित्त में प्रसन्नता होती है राजी होते हैं उसको सुख कहते हैं, एक चित्त में नाराज होते हैं उसको दुख कहते हैं। तो सुख दुख की परिभाषा दो तरह से लोगों में आती है, धन संपत्ति वैभव पुत्र पौत्र आदि होते हैं तो कहते बड़ा सुखी है या नहीं, और जिसके रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अंतिम खत्म के दाम नहीं, तो वैसे बड़ा दुखी है, तो ये दुखदायी परिस्थिति है। परंतु सुख और दुख जो हृदय में होता है अनुकूलता को लेकर सुख का आनंद होता है, राजी होते हैं ये सुख है, और जो नाराज होते हैं ये दुख है, ये सुख दुख के समय इन सुख दुख में समता करना है, मन भीतर से सुख दुख होना नहीं चाहिए, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल में सिद्धि सिद्धि समभूत सिद्धि असिद्धि अनुकूलता आगे प्रतिकूलता आगे, तो सावधान रहो, कहते दुख हो जाता है सुख हो जाता है तो हो जाता है, हे नाथ ऐसा पुकारो, अगर भक्त है ऐसा पुकारो, अगर ज्ञान मार्ग है तो सुख भी ठहरता नहीं दुख भी ठहरता नहीं, ज्ञान के लिए विचार मुख्य से विचार रहेगा, ये सुख में क्या सुख है ये ठहरेगा नहीं, अरे दुख में क्या दुख है घबराओ क्या ये ठहरेगा नहीं, तो सच्ची बात है। तो विवेकवान पुरुष के लिए तो सुख दुख है वे आगंतुक है, हम तो रहने वाला स्वयं आप रहने वाले हो, दुख आने जाने वाले हैं, हम दुख बाहर दरवाजे पर खड़े और बहुत मोटरे आ गई राजी हो गए, एक दिन मोटरे नहीं आई नाराज हो गए, अरे नाराज क्यों होते राजी क्यों होते, ये चलता है, ये तो आती है कभी आती कभी नहीं आती है, अपने क्या मतलब उनसे, ऐसे सुख दुख आदि अनुकूलता प्रतिकूलता आती है सब में आती है, इन क्या नहीं बात है, क्या सुखी दुखी होना है ये तो चलता है, तो सीधे सीधे समूत सिद्धि असिद्धि में सम होकर आसक्ति का त्याग करके और सर्वभूता को समर्थ, जितनी समता आ गई उतना योग आ गया है, समता समता होते ही परमात्मा प्राप्ति होगी, क्यों निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष वो सम है, और ये शाम साम्य स्थित मन जिनका मन साम्यावस्थ में स्थित होगा यही चीज स्वर्ग, यही चीज स्वर्ग ये शाम साम्य स्थित मन ब्रह्मिता, तो वो समझा लाओ ये तो आता है जाता है आता है जाता है, इसमें क्या राजी हो क्या ना हो, सूर्योदय होता है बड़ी अच्छी बात है, सबको काम करना मिलता है, इसी तरह से कार्य करते हैं, अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में तो बत्ती करो कुछ काम करो, नहीं तो कल करेंगे, और होने से क्या फायदा, तो सूर्योदय होने पर प्रकाश हो जाता है और सूर्य अस्त होने पर अंधकार हो जाता है, ये तो होता है, अब उसमें हर्ष होना खुशी दुखी होना इसमें क्या मतलब, सुख दुख से क्या मतलब, क्यों सुख दुखी हो, ये तो हुआ अलिंगम, ऐसे सुख दुख है अलिंगम, मिल जाती बस दृष्टान दिया है कि सुख दुख तो अरेंज है, इसका उल्लंघन कर नहीं सकते, दिन रात आता जाता रहता है, तो आता जाता है उनमें हम रहने वाले क्यों घबरा में, हम तो रहने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं। आज दिन तक जो आप भाई बहन बैठे हैं, वो सोचे कि सुख दुख कई बार आया और कई बार गया, और आप हो वैसे के वैसे ही, तो आप हर दिन रहने वाले और सुख आने जाने वाले, खुद से सुख दुख क्यों हो, असर पड़ जाता है, पैसा कोई परवाह नहीं, असर तो भाई जैसे गांव में जाओ तो गांव का भी असर पड़ता है, ठंडी का भी असर पड़ता है, तो असर पड़ता है तो असर में समझा रहा हूँ, घबराओ मत, उस लोग को मिटाने की कोई पैसा हो तो कर लो, नहीं तो ये घबरा दे, ये घबरा जाना राजी होना ये है बंधन, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है रागत द्वेष हो व्यवस्थित हो तो नागत से क्यों तो ये से परिबंधन हो, ये दोनों मार्ग में लुटे रहे हैं, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राजी और नाराज होना ये गलती है, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाएगी क्योंकि संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप ही अनुकूलता प्रतिकूलता ही है, और क्या है संसार, सबका संसार अनुकूलता प्रतिरूप है, ये तो संसार का स्वभाव है, संसरणशील है संसार जा रहा है, ये तो सम्यक संसार सम्यक प्रकार ने सरत ये संसार हरदम चलता रहता है, अब चलता रहता है उस वजह से क्यों राजी क्यों नाराज हूँ, आप सबकी अच्छी बात है, सुख ही आ गया कभी दुख आ गया कभी अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आ गई, आदर आ गया कभी निरादर हो गया, कभी प्रशंसा हो गई कभी निंदा हो गई, कभी सर शीत आ गया कभी घाम आ गया कभी वर्षा आ गई कभी हवा आ गई, ये तो आते जाते अपने अनुभव की बात है सभी, इसमें नई बात कौन सी है, सुख आया तो कौन सा ठहरा है, दुख आया तो कौन सा ठहरा है, ये तो ठहरने वाला है नहीं, ये विवेक है, तो ज्ञान मार्ग की तो विवेक से दूर कर देता है, और भक्ति मार्ग की भगवान की इच्छा, हम क्यों करें भाई, भगवान की जैसी मर्जी है, जाहिर बिल रख राम ताहिर बिल रहिए, सीताराम 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 कहिए, भगवान की ऐसी मर्जी, बहुत अच्छी बात, बड़ी आनंद की बात है। एक कहानी आती है, उसका सदुपयोग करना दुरुपयोग नहीं करना है, नौका मैं चढ़कर लोग पार जा रहे थे नदी से, तो उसमें सब लोग बैठ गए, बाबा जी बैठ गए, बैठ गए बाबा, तो नदी चली तो उधर आ गया बाढ़, पानी बढ़ गया एकदम अचानक, और मेरा ऐसा जोर से आया बाढ़ जैसे नौका डिगमगाने लगी, तो कह रहा भाई अब अपन इसको याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही है, जोर से पानी आ गया इस हाथ में नहीं रही है, वो बाबा बैठे थे वो क्या करते, जय सियाराम जय सियाराम, कमंडल उषा वो भर भर करके पानी डालने लगे नौका में, जय सियाराम जय सियाराम, थोड़ी देर चले तो नाविक ने कहा कुछ अब कोई कुछ खड़ा नहीं है, अब हमारा बस चलता है, अब पानी पहुंच जाते हैं, तो भीतर जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम, वो कह रहे थे वो दया नहीं आती, साधु बना है कि क्या दया, नौका डूब जाती इतने आदमी मर जाते, वो पानी भरता है पहले से, कैसे मैं कौन सा अलग रहता, दया तो चबावे कि मैं तो बचू आप मरो, तो दया आवे मैं भी तो साथ में ही था, तो मूर्खता क्यों करिए, कि मूर्खता नहीं हम समझते नहीं, इस मूर्खता है, कड़ी मूर्खता नहीं है, समझने में मूर्खता है, क्या मैंने समझा कि भगवान डुबोना चाहते हैं, तो भगवान के सब अपने करो युद्ध करो, फिर ठीक आ गए अब ठीक करो भाई, भगवान ने डुबोना नहीं है तो अपने करो इसमें मदद करो, हम अपने जीने मरने का विचार नहीं, भगवान की इच्छा पर रहते हैं, भगवान यूं चाहते वैसे हो जाए, ऐसे चाहते जैसे हो जाए, जैसे भगवान की इच्छा, अपनी क्यों नाराज हो गए क्यों राज हो गए, ये कहानी इसका अर्थ पानी भरना ऐसा नहीं सीखना है, पानी फेंकना तो सीख लेना है, पर ये काम में नहीं जाना है ऐसा, अपने तो आप से आप होता है उसमें प्रसन्न हो, अगर डूबे तो बड़ी अच्छी बात है, चल जाए तो बड़ी अच्छी बात। भगवान की जैसी मर्जी, हम क्यों अपने विचार करें? को ज्ञान मार्ग है तो विचार है, आगंतुक है। सांस्कृतिक आगवा पाए नो अन्य सांस्कृतिक स्वभाव पुरुषम पुरुष समुख सुखम धीरम स्वामी तत्व करते वो मुक्ति का पात्र होता है, वो समता रहता है। तो ये मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे? शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगमा पाए नो अनित्य सांस्कृतिक शरण। शरण का मतलब सुख भी सहल, मन सुख में सुख हर से जड दुख बिल खाई तो उसम जी धरे मन माए सुख हर से जड सुख में अर्ज करना अनुकूलता ये भी जड़ता है, दुख में बिल खाई ये भी जड़ता है। दोनों से आगे जाने आगल सुख है। अपने तो भगवान के तत्व को विचार कर वो तत्व परिपूर्ण एकदम सब जगह विराजमान है, हम क्यों करे गए? तो वो समतो तत्व है, वो सदा सब में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण वस्तुओं में सब देश में सब काल में वो तत्व परिपूर्ण है, सबसे अभिन्न वो तत्व है। फिर हम घबराए क्यों? उस तत्व के दिल से रखो, तत्व में कोई विकार कभी आया नहीं, कभी आएगा नहीं, आना संभव ही नहीं है। उस तत्व की तरफ अपनी दृष्टि देनी चाहिए। अब शरीर है ये जाने वाली है, दो तरह तेरी परिभाषा की, मुख संयोग वियोग में योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, समय परमात्मा का स्वरूप। और ये दुख संयोग यदि वियोग होता है तो संसार का वियोग प्रतिक्षण होता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस संसार का वियोग न होता हो। तो वियोग होने में घबराना नहीं, और समता की प्राप्ति स्वतः ही है, स्वाभाविक परमात्मा तत्व को प्राप्त है। हम आने जाने वाले संसार में करते थे राग तो द्वेष हो जाता है ना, तो ऐसे परिबंध नहीं ये रहे दूर। तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोहा, मोह मेरा नष्ट हो गया, नष्ट हो करके स्मृति लब था, स्मृति लब था क्या था? स्मृति नाम याद आ गई बात। तो स्मृति होती है वो नया ज्ञान नहीं होता है, पुराने ज्ञान की याद आती है, नया ज्ञान निर्माण नहीं होता है। स्मृति लब्धा अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति अथवा अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, ऐसा दर्शनकारों ने लिखा है। तो अनुभूत विषय पहले उसकी स्मृति याद आ जाए तो अनुभूत क्या है? यहाँ वो लक्षण पूरा नहीं घटेगा। मानो तत्व जो है उससे हम विमुख हुए थे, ये हमारी विस्मृति, अब अगर स्मृति लग जा तो प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कि नया ज्ञान हो गया, उसकी प्राप्ति होगी, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होगी। वो ठीक वैसे ही है, परमात्म तत्व वैसे ही है। संक्षेप शारीरिक में लिखा है कि यद पाद पंकज शयनम बिना मे सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुराशी, जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को स्वीकार नहीं किया तब सन्नप्य सन्न होता हुआ प्रथम असन्न पुराशी मैं है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। और अब भविष्य भेद बुद्धि न तो भेद था न है न होगा, सही है तत्व है जो का जो है। तो यह जब तक गुरु महाराज की कृपा को स्वीकार नहीं करता है तब तक ये होता है, और स्वीकार करते तो है जो मिल जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मोह नष्ट हो गया, तत्प्रसाद आपकी कृपा से दिया है, अच्युत अच्युत संबोधन दिया भगवान को, कहा आप अच्युत। तो सभी सबसे पहले अच्युत कहा है और बीच में अच्युत कहा है, तीन बार अच्युत आता है गीता में, तीन बार अच्युत संबोधन आता है। शेरियो मध्य संस्थापय में च्युत, पहले आज्ञा देता है दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो तो अच्युत कहता है, और बीच में कहता है कि महाराज 3 बजे 42 तो व्यास रूप देकर घबराया तो कहते हैं महाराज मेरी तो 3 दशा हुई, पहले तो युद्ध करने की सूरवीरता आई, फिर भी एकादश अध्याय में आपका विराट रूप से घबरा गया और अब मैं स्थित हो गया हूँ, आप है जैसे रहे, आप अच्युत है, मेरी 3 दशा हुई इस बार अच्युत कहता है, तब प्रसाद मैं अच्युत है आपकी कृपा से ये सबको मिला, मेरी पंडिताई से नहीं, तो बात ये सुनने के द्वारा हमारे को जो ज्ञान होता है वो साधारण होता है, परंतु उनकी कृपा होती है गुरुजनों की, उसके द्वारा ज्ञान बहुत विलक्षण होता है, तो मिलता प्यार नहीं मिलता, हुंकार करती है चाटती है गऊ, उससे एक पोषण मिलता है वो दूध की अपेक्षा और ज्यादा मिलता है, इसको वात्सल्य कहते हैं, बस मेरे को लेकर वात्सल्य हुआ है, तो ऐसे गुरुजनों की कृपा है, उनकी जो प्रसन्नता है उस प्रसन्नता से जितना शिष्य को लाभ होता है उतना केवल पढ़ाई से नहीं होता, लेकिन वो विद्या जागृत हो जाती है गुरुजन की कृपा से, तो अर्जुन कहता है महाराज आपकी कृपा से हुआ, अब स्थितोष में कर संदेह, अब संदेह रहे तो स्थित होगा हूँ, करिष्योतन अब क्या करो करिष्योतन, तो अर्जुन पहले भगवान के शरण होता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृथ्वी में त्वाम धर्म संबोध चेता ये निष्पे शिष्य साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणों मेरे को शिक्षा दे दिए आ गई कि क्या ये बचपन कर रहा है, अभी जब मैं आपके शरण हूँ साध इमाम शिक्षा मेरे को शिक्षा दे दी है, अब कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे और क्या काम करवाना है, यहाँ कोई काम है नहीं दूसरा कोई, युद्ध तू करेगा नहीं तो भाई मेरे कहने क्या बाकी रहा, ऐसी बात है युद्ध करना न करना, तो मुसुरा करके भी उपदेश आरम्भ कर दिया, ये भगवान की कृपा है, पर ये लगा बुरा भगवान को कन्या जी से कह दिया, तो 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में कहा कि यद अहंकार आश्रित्य न योच्य इति मन्यसे, यद अहंकार आश्रित्य तो कहता है साधिमान त्वाम प्रपन्नम मेरे शरण होने की बात कर रहा, मैं आपके शरण हूँ तो न योच्य ये मेरी शरण है कि अहंकार की शरण है, अहंकार आश्रित्य आज से अहंकार कर लिया है, कहते मैं आपके शरण हूँ, मैं योग से मनने से मिथ्या सा व्यवसाय ऐसा व्यवसाय थे मिथ्या ऐसा मेरा निश्चय ये झूठा होगा, प्रकृति स्वांग नियोग सती खात्र प्रकृति है सोयम तेजो धृतिम युद्ध है चाप्य पलायन, तो युद्ध में अपलायन है ये खात्र प्रकृति है, प्रकृति स्वांग नियोग सती युद्ध करना पड़ेगा, मैं सुने तो न सोची बिलंग सती पतन हो जाएगा, युद्ध वही है तेरी प्रकृति के बस वो करेगा तो पतन हो जाएगा और मेरे कहने से करेगा उद्धार हो जाएगा, कार्य वही ऐसे सब अपने काम करते हैं जिनके सामने जो जो कार्य है वो ही युद्ध है, अर्जुन युद्ध था इस बार सर्वेश मनुष्य युद्ध था युद्ध कर, इस तरह से अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, वो कर्तव्य भगवान आज्ञा के अनुसार करो तो कल्याण हो जाएगा, और अपने राग द्वेष करो तो पतन हो जाएगा, काम वही है कार्य वही है भगवान की आज्ञा से करो वही काम वही उद्धार करने वाला हो जाएगा, तो भगवान कहते नहीं मिथ्य व्यवसाय से ये अहंकार आश्रित है। तो कहता था मैं आपके आश्रित मेरा नहीं, ये अहंकार अभिमान है। तो अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाचने का अभिमान है, उसको भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान को तो कई सरसा है, कपट गांठ पेट में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण का भक्ति लगा किनारे नाव, सरल स्वभाव मन कुटिलाई दशा लाभ संतोष सदाई मौज था ठीक है महाराज। जो यदा लाभ संतोष हो बंदा थी समय सिद्धा सिद्ध हो से कितनी नंद बनते थे किसी लाभ जो आपसे आप प्राप्त हो जाए उसे बहुत ठीक है, मौज हो रही है, भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा है, वे कृपा से ही सब कुछ विधान करते हैं, उनके विधान से हो रहा है, उसमें अपने घबराने की जरूरत क्या है। बच्चा होता है वो माँ की गोद में रोता है, उसको मूर्ख को पूछा जाए कि माँ की गोद में रोता है हंसेगा कहाँ, ऐसा कहाँ अनुकूल अवसर मिलेगा। तो माँ की गोद में रोता है, ऐसे हम सब के सब भगवान भगवान की छत्र छाया में है, पर पाल जाता है वो तो सबके पाल जाते, उस छाया में बैठे हम रो तो भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते। जो हमारे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है भगवान इच्छा से आती है, प्रार्थ आदि के मन में तो परिस्थिति से मानो तो चाहे ज्ञान योग से कर्म योग से भक्ति योग से मानो तो ये तो आगन दुख है अगवा पाए, इसमें क्या राजी क्या नाराज हो, ये तो आता जाता रहता है। तो भगवान ने अर्जुन ने कहा मनस्तु मोह तत्प्रसादात अर्वशितोष में गत संदेह करिष्ये वसनम तव। ये क्यों कहा, एक मार्मिक बात बताऊं। आज भगवान पूछते हैं कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना के नहीं, तो अर्जुन कहता है कि मैंने गीता एकाग्रता से सुनी है, क्या पता कि ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति ब्रह्मा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणिशति। दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं तो बुद्ध ने ये मैं बताया तो कर्म बताया भगवान ने नष्ट मोह स्मृति अलग था, स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणिशति सम्मोह, तो सम्मोह नष्ट हुआ लेकिन सम्मोह नष्ट हो गया, सम्मोह के नाश में क्या होता है स्मृति अलग था, तो नष्ट मोह स्मृति अलग था। और स्थित हो उसमें वहां प्रणिशति के नहीं मैं स्थित हूँ गत संदेह हूँ, तो करेगा क्या करिषे वसनम तव, यहाँ नहीं कहा युद्ध करूंगा। अर्जुन पहले कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो स्वीकार करने पर कहना चाहिए युद्ध करूंगा, तो युद्ध करूंगा भी शरणागति नहीं होती, न करूंगा पर भी शरणागति नहीं होती। युद्ध करूंगा तो तेरे करने का मन है, युद्ध नहीं करूंगा तो तेरे नहीं करने का मन है, अहंकार का आश्रय है। अर्जुन कहता है कि महाराज अब करिष्ये वचनम तव, आप कहो जैसे करूंगा, बस जैसे आप कहोगे वैसे ही करूंगा। तो ये शरणागति है करिष्ये वचनम तव, इसके बाद भगवान वास नहीं है, गीता समाप्त हो गई, सब पूरा हो गया करिष्ये वचनम तव। और इसमें निभाया है अर्जुन ने जब महाभारत का युद्ध किया था उस समय अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण को सांप था, एक गाय मर गई थी हाथ से, उसे सांप था तो पृथ्वी तुम्हारा थक्का पकड़ लेगी, तो युद्ध तुम्हें शत्रु के सामने जाओगे तो पृथ्वी में थक्का धस जाएगा, तो थक्का धस गया तो वो नीचे उतर करके थक्का को उतार रहा है, तो अर्जुन ने बाण चलाना छोड़ दिया, भगवान कह रहे मारो बाण चलाने लगा। कर्ण कहता है तू शास्त्र को और शस्त्र विद्या को जानता है, शास्त्र की बात को भी तो जानता है और शस्त्र शास्त्र को भी जानता है, मेरे में कैसे तुम बाण चला रहा है। तुम रथ पर चढ़े हो, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ। तो युद्ध का ये कायदा नहीं है, सामने युद्ध के तैयार हो, उसके सामने बाण चलाना चाहिए। वो कैसे बाण चला रहा है? तो अर्जुन तो चुप हो गया, भगवान के मारे बाण कभी से वचन तो कह चुका पहले, अब सुतोष मुगत संदेह संदेह रहते हुआ आप कहोगे जैसे करूंगा ऐसा स्वीकार कर लिया। तो बाण चलाए, अब बाण चलाए तो अर्जुन क्या बोले? कर्ण कहता है कि ये धर्म नहीं है, नीचे खड़े ऊपर रथी एक बाण चलावे दूस पर, ये उससे धर्म नहीं है। मैं दूसरे काम में लगाऊं तो बाण चलाता, ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा अब तेरे को धर्म याद आया। भीमसेन को जहर दे करके फेंक दिया नदी में, वो कौन सी स्मृति में लिखा हुआ था? किस धर्म का पालन किया? पांडवों को लाखाग्रह में जलाकर भस्म करना चाहता था, आग लगा दी, ये कौन से धर्म का अनुष्ठान था? और राज्य तुमने झूठा जुआ खेल करके सब राज्य हर दिया, ये कौन सा धर्म का अनुष्ठान था? अभी अभिनंदन ने 6 बार मारते ने मिलकर के युद्ध में मार दिया, ये कौन सा धर्म का अनुष्ठान था? जयद्रथ स्त्री को लेकर द्रौपदी को लेकर भाग गया, वो कौन सा धर्म का अनुष्ठान तुमने किया है? धर्म की दुआई वही दे सकता है जो स्वयं धर्म का पालन करता है, और धर्म का पालन नहीं करता ऐसे आपचारी के लिए आज चाहे माया तो अन्यचार्य ना तो दाई बदल दो अंतर्भूति कस्तन जो जहर दे दे अग्नि लगा दे और उसकी जमीन को हड़प ले और स्त्री को चुरा कर ले जाए और ससुर के सामने आ जाए, ऐसे 6 काम करने वाले आत्मचारी होते हैं। तो आज चाहे मायान तो मन जाते अविचार्य निर्न्यास बिना विचार के आत्मचारी को मार देना चाहिए। तुम्हें एक आत्मचारी का दोष हो तो मारने लायक हो, तुम्हें 6 आत्मचारी बना है, इस वजह से किस तरह से मारना? शास्त्र कहता है धर्म है ये धर्म शास्त्र। अब सुबह क्या बोले? तू धर्म की दुराई देता है, क्या धर्म का अनुष्ठान करे तब जो कह सकता है वो? तुम अधर्म अधर्म करते ऐसे आते हो तो किसी से मार दो नहीं धर्म है। सुबह हो गया, अर्जुन ने देखा कि आज मैं धर्म की तरफ देखा देखता तो क्या दशा होती। अर्जुन पर पूछा ही है तो महाराज आपको मैं कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृछा मे तो हम धर्म सम्मूढ़ देता, अब धर्म में मैं मूर्ख हो गया, समझता नहीं हूँ। कारण के छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध में विमुख नहीं होना चाहिए, और वो पापी है जो कुल का नाश करे तो कुल का नाश करना अधर्म होता है और युद्ध न करना भी अधर्म होता है क्षत्रिय के लिए। अब युद्ध करूं तो गुरुजनों को मारना पड़ता है, और युद्ध नहीं करूं तो क्षत्रिय धर्म के अंतर्भूत होता हूँ, तो धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। भगवान के तेरे पर जरूर क्या है? मैं कहूँ जैसे कर तू धर्म निर्णय नहीं कर सकता। अर्जुन ने देखा मैं अगर धर्म का निर्णय करता तो गलती हो जाती, तब धर्म को जानने वाले भगवान बैठे हैं। तो अर्जुन ने कहा कभी से वचनम तब आप जो कहोगे आज्ञा पर वही करूँगा मैं, क्योंकि अब धर्म के से अर्जुन पर धर्म का कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरफ में विचार की जरूरत नहीं। करी से वचनम तो वही किया उसने, तो साधमान काम प्रपन्न सरल हो गया। अब शिक्षा भगवान दे उसके क्या दे? करी से वचन तो आप कहो जो भी करूंगा बस। तो भगवान को यही कहलाना था, फिर चुप हो गए, भगवान कुछ नहीं कहा, फिर दिल हुआ। तो भगवान के शरण होने से जो भगवान की शक्ति मिलती है वो केवल सुनने से नहीं मिलती, सुनने से ज्ञान होता बोध होता है सच्ची बात है, परंतु जो गुरुजनों की कृपा आती है भीतर से, उनका एक भीतर से हार्द स्नेह होता है, उस एक तत्व की बात विलक्षण मिलती है। इस वास्ते मनुष्य के लिए गुरुजनों की कृपा है वो देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। इस वास्ते कभी से वो तुरंत तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो ये मोह है राग द्वेष जो हम रहते हैं इसमें होता है मोह। राग द्वेष रहित हो जाए मोह मिट जाएगा, मोह नहीं तो उसे बोध हो जाएगा। बोध जो है स्वतः शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, ये स्वाभाविक केवल राग द्वेष से माया को मानो नाशवान को महत्ता देगी। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, एक संत से मैंने सुना कि जाने हुआ असत का त्याग करना है। जाने हुआ असत, जिसको असत जानते हो उसे त्याग करो, नहीं जानते ये आप ठेगा नहीं। आप जानते हो कि शरीर से उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, ये संयोग वियोग होने वाले हैं, परिस्थिति सुविधाएं मुक्ति आने जाने वाली है, जानते हो असत, फिर क्यों घबराते हो? जाने हुए असत का त्याग करो, वह मुक्ति हो जाएगी। तो मनुष्य में ज्ञान है, सत्य है, उसका आदर करो। तो संसारिक काम जिस वैसे करने से होता है, न करने से नहीं होता, ऐसी नहीं है। संसार की तरह ये उन्नति नहीं है। इसलिए तो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है। संसार नित्य निवृत्त हो रहा है, शरीर निरंतर निवृत्त हो रहा है, उससे तो निवृत्त होना योग होता है। और तत्व जो प्राप्त है समरूप से सबके परिपूर्ण, उसको प्राप्त करना है, इसका नाम योग है। दो योग की परिभाषा है। तो दोनों बातें हमारे को प्राप्त हो रही है, केवल सावधान रहना है कि इनके संयोग वियोग को लेकर के और सुखी दुखी नहीं होना है। अपने दिल में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है, भगवान की मर्जी ये है, बहुत ठीक है। भक्ति के लिए ये और ज्ञान मार्ग के लिए आगमा पाई ना नित्य आने जाने वाले हैं। आप रहने वाले और आने जाने वाले, ये तो अनुभव, सबको अनुभव है। मूर्ख को भी इस बात का अनुभव आने जाने वाले हैं। भगवान ये उपदेश आरंभ करते ही कह दिया, मात्रा स्पर्शास तू कौन थे शीतोष्ण स्मूदा, शीतोष्ण नाम अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता से प्रसन्नता होती है, शीतलता होती है, प्रतिकूलता से दयन होती है। तो शीतोष्ण सुख दुख का अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, अगवा पाए आने जाने वाले हैं, स्थान स्थिति और यहाँ बेचैन थे, ये दशा नहीं पहुंच जाते समझाना नहीं है। तो अपने जो संसार के सामने ऐसे रहना है कि अनुकूल और प्रतिकूलता में विचलित न हो, इतने से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विचलित होते हैं तो ज्ञान से वंचित रहते हैं, फायदा कुछ नहीं। दुख पावे रोवे कल्पना करे और ज्ञान से वंचित रहे और एक अनुकूलता प्रतिकार सुख दुख में सुखी दुखी नहीं हुए, हम प्रसन्न रहे, तत्व की प्राप्ति हो जाए, कितनी मौत की बात है। इस बात को ठीक से जान सब काम ठीक हो जाता। नारायण 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 नारायण।